नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। कर्ज में फंसी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के ऋणदाताओं की मंगलवार को होने वाली बैठक में कर्ज समाधान के लिए पेश टॉरेंट समूह और हिंदुजा समूह की बोलियों पर विचार किया जाएगा। अहमदाबाद स्थित टॉरेंट समूह ने रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए 8,640 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। वहीं हिंदुजा समूह की तरफ से इसके लिए 8,110 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है। कर्ज समाधान प्रक्रिया के तहत रिलायंस कैपिटल की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थी। ऋणदाताओं की समिति ने इसका आधार मूल्य 6,500 करोड़ रुपए रखा था। गत 21 दिसंबर को ऑनलाइन नीलामी आयोजित की गई थी। सूत्रों के मुताबिक हिंदुजा समूह ने ऑनलाइन नीलामी खत्म होने के बाद एक संशोधित कर्ज समाधान प्रस्ताव भी पेश किया, जिसमें 9,000 करोड़ रुपए की बोली लगाने के साथ ही समूची राशि अग्रिम तौर पर नकद देने की पेशकश की गई है। दूसरी तरफ टॉरेंट समूह ने सिर्फ 3,750 करोड़ रुपए ही अग्रिम नकदी के रूप में देने की बात कही है। किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए IBC कानून के तहत इतने बड़े पैमाने पर लगाई गई ये पहली बोली है। उद्योग मंडल SOCHM ने सोमवार को कहा कि मजबूत उपभोक्ता मांग, कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन और मुद्रास्फीति में नरमी के साथ देश की अर्थव्यवस्था के 2023 में वैश्विक स्तर पर कठिन दौर से बाहर निकलने और मजबूत प्रदर्शन करने की उम्मीद है। ये साल चुनौतियों और अवसरों से भरा रहेगा, SOCHM के महासचिव दीपक सूद ने कहा। हालांकि वैश्विक स्थिति चुनौतीपूर्ण लग रही है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती बने रहने की उम्मीद है। इसका कारण मजबूत घरेलू मांग, वित्तीय क्षेत्र की अच्छी स्थिति और कंपनियों के बही खातों का सुदृढ़ होना है। रबी फसल की उपज बेहतर रहने के शुरुआती संकेत मिले हैं। ये कृषि क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है। इससे दैनिक उपयोग के सामान, ट्रैक्टर, दोपहिया वाहन, विशेष रसायन और उर्वरकों जैसे संबंधित उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यात्रा, होटल और परिवहन जैसे संपर्क वाले क्षेत्रों में ग्राहकों की रुझान अच्छा है। इसका सकारात्मक प्रभाव परिवहन, आवास, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोच विचार कर होने वाले उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च और वाहन क्षेत्रों पर पड़ेगा। वैश्विक ऊर्जा दक्षता समाधान कंपनी ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए पूंजी जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कराए हैं। दस्तावेजों के अनुसार IPO के तहत 75 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी के प्रवर्तक समूह के शेयरधारक और एक मौजूदा निवेशक 94.17 लाख शेयरों की बिक्री पेशकश लाएंगे। दस्तावेजों के अनुसार कंपनी IPO से पहले 15 करोड़ रुपए तक के नियोजन पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो मूल निर्गम का आकार घट जाएगा। कंपनी 59.50 करोड़ रुपए के निर्गम से प्राप्त आय का उपयोग नासिक में अपनी विनिर्माण सुविधा के विस्तार और सामान्य कंपनी कामकाज पर करेगी। कंपनी के शेयर BSE और NSE पर सूचीबद्ध होंगे। कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के बाद 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार हुआ है, जो आगामी तिमाहियों में और बेहतर होगा। हालांकि अर्थव्यवस्था के समक्ष भू राजनीतिक तनाव, डॉलर की मजबूती और ऊंची मुद्रास्फीति जैसे जोखिम भी हैं। वृद्धि के सकारात्मक रुझान और बुनियादी गतिविधियों में सुधार आने से देश को वैश्विक स्तर की उन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलेगी, जिनका आने वाले महीनों में भारत के निर्यात पर बुरा प्रभाव हो सकता है। नए साल में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के सामने मुद्रास्फीति को काबू में करने, डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को थामने और निजी निवेश एवं वृद्धि को बढ़ावा देने जैसी चुनौतियां हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि भारत तेजी से वृद्धि करने वाली दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहे। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में भारत की वृद्धि दर 9.7% रही। इस अवधि में इंडोनेशिया की वृद्धि दर 5.6%, ब्रिटेन की 3.4%, मेक्सिको की 3.3%, यूरो मुद्रा के चलन वाले क्षेत्रों की 3.2%, फ्रांस की 2.5%, चीन की 2.2%, अमेरिका की 1.8% और जापान की वृद्धि दर 1.7% रही है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने अपने वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के कई अधिकारियों को पदोन्नत कर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कंपनी ने सोमवार को ये जानकारी दी। तरुण गर्ग को कंपनी का COO बनाया गया है। अभी तक वो निदेशक थे। अपनी नई भूमिका में गर्ग बिक्री, विपणन सेवा और उत्पाद रणनीति का काम देखेंगे। इसके अलावा गोपाल कृष्णन CS को मुख्य विनिर्माण अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है। अभी तक वो उपाध्यक्ष थे। नई भूमिका में वो उत्पादन, गुणवत्ता प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला का कामकाज देखेंगे। ये पदोन्नतियां 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हैं। गर्ग और गोपाल कृष्णन इन नई भूमिकाओं के अलावा हुंडई मोटर्स के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक बने रहेंगे। कोल इंडिया ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल दिसंबर के दौरान बिजली क्षेत्र को 43.27 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की। यह सालाना आधार पर 11% अधिक है। एक साल पहले इसी अवधि में कोयला आपूर्ति 39.02 करोड़ टन थी। उत्पादन बढ़ने से अन्य क्षेत्रों को कोयला आपूर्ति पिछले महीने 1.05 करोड़ टन रही। कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन चालू वित्त वर्ष में अप्रैल दिसंबर के दौरान बढ़कर 47.9 करोड़ टन रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में 41.36 करोड़ टन था। कंपनी ने बयान में कहा, चालू वित्त वर्ष में 70 करोड़ टन के उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोल इंडिया को 2022-23 की चौथी तिमाही में 22.1 करोड़ टन कोयला उत्पादन करना होगा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 20.9 करोड़ टन था। हम उत्पादन को लक्ष्य से अधिक कर ले जाने को लेकर उत्साहित हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए INJANSATTA.com पर नमस्कार।